आज क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी का आविर्भाव तिथि है तो हम आदि लीला के तीसरे अध्याय का एक श्लोक पढ़ेंगे, श्लोक 52, जिसमें जो कि श्लोक भागवतम से लिया गया है और जिसमें ये बताया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु जी कौन है, स्वयं भगवान है। कृष्णा वर्णम श्रीशा कृष्णम संगोपंगस्त्रम परशदम यज्ञे सांकेतं प्राये इजंती हिस्यु मेधसा। हिंदी में कोई पढ़ेगा? हिंदी में कोई है पढ़ने के लिए? असीम कृष्णा थे नौ कृष्णा वर्णन त्वेक्षा कृष्णम संगोपंगस्त परषदम यज्ञ संकेतन प्राय जंती ही सुमेधसा। कृष्णा वर्णन त्वेक्षा कृष्णम संगोपंगस्त परषदम यज्ञे संकेतन प्राय जयंति ही सुमेधसः। कृष्णावन त्वेक्ष कृष्णम संगोपंगस्त परषदम यज्ञे संकेतन प्राय जयंति ही सुमेधसः। कृष्णावन त्वेक्ष कृष्णम संगोपंगस्त परषदम यज्ञे संकेतन प्राय इजंति ही सुमेधसः। Master Jeez.
Anubhav. कलि युग में बुद्धिमान पुरुष ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करता है। यद्यपि उसका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है किंतु वह साक्षात कृष्ण है। उसके साथ उसके पार्षद सेवक आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। अनुवाद दोहराएंगे। कलि युग में बुद्धिमान पुरुष ईश्वर के उस अवतार की पूजा करने के लिए सामूहिक कीर्तन करते हैं जो कृष्ण नाम का निरंतर गान करता है। यद्यपि उसका शरीर श्याम वर्ण का नहीं है किंतु वह साक्षात कृष्ण है। उसके साथ उसके पार्षद सेवक आयुध तथा विश्वस्त संगी रहते हैं। तात्पर्य, यह श्लोक श्रीमद् भागवतम से 11 स्कंद अध्याय 5 श्लोक संख्या 32 से लिया गया है। श्रील जीव गोस्वामी ने इस श्लोक की टीका भागवत पर लिखित अपने भाष्य क्रम संदर्भ में करते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण भी सुनहरे शरीर के साथ प्रकट होते हैं। ये सुनहरे कृष्ण ही भगवान चैतन्य हैं, जिनकी पूजा इस युग में बुद्धिमान पुरुषों द्वारा की जाती है। इसकी पुष्टि गर्ग मुनि द्वारा श्रीमद् भागवतम में हुई है, जिन्होंने कहा है कि यद्यपि बालक कृष्ण श्याम वर्ण के हैं, किंतु वे अन्य तीन रंगों लाल, श्वेत तथा पीत में भी प्रकट होते हैं। उन्होंने श्वेत तथा लाल शरीरों का प्रदर्शन क्रमशः सत्य युग तथा त्रेता युग में किया। उन्होंने शेष रंग पीला सुनहरा को तब तक प्रदर्शित नहीं किया जब तक वे श्री चैतन्य रूप में प्रकट नहीं हुए, जिन्हें गौर हरि नाम से जाना जाता है। श्रील जीव गोस्वामी कृष्ण वर्णम की व्याख्या श्री कृष्ण चैतन्य के रूप में करते हैं। कृष्ण वर्णम तथा श्री चैतन्य कृष्ण चैतन्य एक हैं। कृष्ण नाम भगवान कृष्ण तथा चैतन्य कृष्ण दोनों में आता है। श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, किंतु वे सदैव कृष्ण का गुणगान करने में लगे रहते हैं और इस तरह उनके नाम तथा रूप का कीर्तन एवं स्मरण करके दिव्य आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं भगवान चैतन्य के रूप में सर्वोच्च उपदेश देने के लिए प्रकट होते हैं। वर्णयति शब्द का अर्थ है उच्चारण करते हैं या वर्णन करते हैं। भगवान चैतन्य सदैव कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं और उसका गुणगान भी करते हैं। चूंकि वे स्वयं कृष्ण हैं, अतएव जो भी उनसे मिलेगा वह भी स्वतः कृष्ण के नाम का कीर्तन करेगा और फिर अन्यों से उसका गुणगान करेगा। वे मनुष्य में दिव्य कृष्ण भावनामृत भरते हैं, जिसे कीर्तन करने वाला दिव्य आनंद में मग्न हो जाता है। इसलिए वे हर प्रकार से हर व्यक्ति के समक्ष प्रत्यक्ष या शब्द द्वारा कृष्ण के रूप में प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य का दर्शन करने से ही भगवान कृष्ण का स्मरण हो आता है, अतः उन्हें विष्णु तत्व के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में श्री चैतन्य स्वयं कृष्ण है। सांगो पांगास्त्र पार्षदम से भी यह सूचित होता है कि श्री चैतन्य भगवान कृष्ण है। उनका शरीर चंदन के आभूषणों एवं चंदन लेप से सदैव अलंकृत रहता है। वे अपने अपार सौंदर्य से अपने युग के सारे लोगों को नीचा दिखाते हैं। अन्य अवतारों में भगवान कभी कभी असुरों को परास्त करने के लिए अस्त्रों का प्रयोग करते हैं, किंतु इस युग में भगवान अपने सर्व आकर्षक स्वरूप श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में उन्हें परास्त करते हैं। श्रील जीव गोस्वामी बताते हैं कि उनका सौंदर्य ही उनका अस्त्र या हथियार है, जिससे असुरों का दमन होता है। चूंकि वे सर्व आकर्षक हैं, अतएव यह समझना चाहिए कि सारे देवता उनके संगियों के रूप में साथ साथ रहें। उनके कार्य असाधारण तथा उनके संगी अलौकिक थे। वे जब संकीर्तन आंदोलन का प्रचार कर रहे थे तो बंगाल तथा उड़ीसा के अनेक महान विद्वान तथा आचार्य उनके प्रति आकृष्ट थे। भगवान चैतन्य सदैव अपने सर्वश्रेष्ठ पार्षदों तथा नित्यानंद अद्वैत गदाधर तथा श्रीवास के साथ रहते हैं। श्रील जीव गोस्वामी वैदिक साहित्य से एक श्लोक प्रस्तुत करते हैं, जिसमें यह कहा गया है कि यज्ञों के प्रदर्शन या उत्सव संपन्न करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उनकी टीका है कि ऐसे बाह्य दिखावों में लगने के बजाय लोगों को जाति रंग वर्ण आदि का भेदभाव न करके भगवान चैतन्य की पूजा करने के लिए एक साथ एकत्र होकर हरे कृष्ण कीर्तन करना चाहिए। कृष्ण वर्णम तुषा कृष्णम बतलाता है कि कृष्ण नाम को प्रधानता दी जानी चाहिए। श्री चैतन्य ने कृष्ण भावनामृत की शिक्षा दी और कृष्ण नाम का कीर्तन किया, अतएव श्री चैतन्य की पूजा करने के लिए सबको मिलकर महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करना चाहिए। गिरजाघरों मंदिरों या मस्जिदों में पूजा का प्रसार संभव नहीं, क्योंकि लोगों की रुचि उधर नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण कीर्तन कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। इस प्रकार श्री चैतन्य की पूजा करते हुए लोग सर्वोच्च कर्म करते हैं और भगवान को प्रसन्न करने का सर्वोच्च धार्मिक प्रयोजन पूरा हो सकता है। श्री चैतन्य के सुप्रसिद्ध शिष्य श्री सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा है, दिव्य भक्ति जो के समाप्त हो जाने पर भक्ति विधि का पुनरुद्धार करने के लिए श्री चैतन्य प्रकट हुए हैं। वे इतने दयालु हैं कि कृष्ण प्रेम का वितरण करते रहते हैं। हर एक को उनके चरण कमलों के प्रति अधिकाधिक आकृष्ट होना चाहिए। जिस प्रकार की गुंजार करता भौरा कमल के फूल के प्रति आकृष्ट रहता है।
ओम ज्ञान त्रिमनंदस्य ज्ञानंजना शलक्य चक्षुरन्मिलितानेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टो साभिरामेण भूतले स्वयं रूपा ददाति स्वाम। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवंश श्रीरूपं सग्रजतं सहगना रघुनाथन्वितं तं सजीवं सद्वैतं सोऽधूतं प्रियजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्ता कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभ प्रणमामि हरि प्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च परिधामो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त हरे कृष्ण वर्णम त्रिक्षक त्रिषा कृष्णम संगो पंगस प्रणशदम यज्ञ संकीर्तन प्राय जानते ही से मेधसा। तो भागवतम का बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जो कि भागवतम के 11वें स्कंद में प्राप्त होता है। महाराज दीपी ने पूछा था करभजन से भगवान के अनेक अवतारों के विषय में, और उस प्रश्न के उत्तर में करभजन भगवान के अनेक अवतारों का वर्णन कर रहे हैं, और इस श्लोक द्वारा स्पष्ट स्थापित हो रहा है क्या कि भगवान कलयुग में प्रकट होंगे चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में, और चैतन्य महाप्रभु के रूप में उनका प्रसिद्ध कार्य क्या होगा, हरि नाम का उच्चारण और हरि नाम का प्रचार। तो चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान है। श्री कृष्णा चैतन्य राधा कृष्णा नाहे आनिया, राधा और कृष्णा प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। कुछ समय पहले आप भक्त नरोत्तम दास ठाकुर का प्रसिद्ध भजन गा रहे थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे। नरोत्तम दास ठाकुर वैसे तो एक राजा के बेटे थे, राजकुमार थे बंगाल में, पर उनका आकर्षण था चैतन्य महाप्रभु जी के चरणों की तरफ, तो उन्होंने अनेक भजन लिखे। तो इस भजन में वो कह रहे हैं, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु आप मेरे ऊपर दया कीजिए। तुम्हा बिना के दयालु जगत संसार है। आपसे ज्यादा दयालु कोई अवतार नहीं। पतित पवन है तो तव अवतार। आप प्रकट क्यों हुए हो? आप प्रकट हुए हो पतितों का उद्धार करने के लिए। और देखा जाए कलियुग की जो पूरी प्रजा है पतित है। कलो शूद्र संभव। हम बेशक ये दावा करें कि हमारा जन्म तो ब्राह्मण खानदान में है, हम ऊंचे खानदान के हैं, पर शास्त्र के अनुसार कलियुग में हम सब हैं शूद्र के समान। आजकल भारत में हम कहते रहते हैं ऊंची जाति नीची जाति, पर सभी नीची जाति के हैं इस कलियुग में। कलो शूद्र संभव तो 100% रिजर्वेशन होना चाहिए। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं पतित पवन है तो तव अवतार। आप अवतारित हुए हो किस लिए? पतितों का उद्धार करने के लिए। और आगे कहते हैं मोह समा पतिता प्रभु ना पाए बेहारा। मेरे से ज्यादा पतित कोई नहीं है। तो ये है भक्त का भाव। तो श्रीमद् भागवतम के सातवें स्कंद में आपको प्रहलाद महाराज की शिक्षा प्राप्त होती है। और प्रहलाद महाराज जी ने महाप्रभु जी के अवतार के विषय में कहा है कि वो गुप्त अवतार के रूप में प्रकट होंगे कलियुग में। भगवान गुप्त अवतार का अर्थ है छुपा हुआ अवतार है भगवान, पर ये दावा नहीं करेंगे कि मैं भगवान हूं। है भगवान पर प्रकट होंगे भक्त के रूप में। और वो भक्त के रूप में प्रकट हुए थे चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। चैतन्य महाप्रभु जी के दादाजी का नाम था उपेंद्र मिश्रा और उनके 7 बेटे थे जिनमें एक बेटा था जगन्नाथ मिश्रा। उपेंद्र मिश्रा पहले निवास करते थे उस स्थान में जैसे आज हम बांग्लादेश बुलाते हैं। अगर आप बांग्लादेश जाओ तो वहाँ अनेक तीर्थ के स्थान हैं जहाँ हमारे वैष्णव संत प्रकट हुए हैं। इस्कॉन के भी लगभग 40 केंद्र हैं बांग्लादेश में और हजारों भक्त हैं। तो उपेंद्र मिश्रा बांग्लादेश के निवासी थे। उनके 7 बेटे थे जिनमें से एक ज़्यादा पढ़ा लिखा था जिनका नाम था जगन्नाथ मिश्रा। और जगन्नाथ मिश्रा बांग्लादेश से आगे थे रहने के लिए नवद्वीप धाम में। जब वो नवद्वीप धाम में आए तो वहाँ उनका परिचय हुआ उस समय के एक बड़े प्रसिद्ध जोशी के साथ, एस्ट्रोलॉजर, जिनका नाम था नीलम्बरा चक्रवर्ती। और नीलम्बरा चक्रवर्ती ने फिर अपनी बेटी सची देवी का विवाह कराया उनके साथ। तो जगन्नाथ मिश्र और सची देवी बहुत आध्यात्मिक दृष्टि से नंद महाराजा और यशोदा के अवतार हैं। तो उनके कई औलाद हुई थी। उनका 9वां बच्चा था विश्वरूप जो कि महाप्रभु जी के बड़े भाई या बालराम जी के अवतार थे यानी थे। और फिर हुए थे चैतन्य महाप्रभु प्रकट। तो भगवान के शुरू में अनेक नाम थे भगवान के। हमारे आपके 1-2 नाम और भगवान के तो हजारों नाम है, लाखों नाम है। हाँ, और भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं तो अपनी अद्भुत लीला प्रकट करते हैं। आजकल भारत में एक बड़ा प्रसिद्ध प्रचारक है जो कहता है मैं चैतन्य महाप्रभु जी का अवतार हूँ तो या नित्यानंद जी का अवतार है। पर नित्यानंद जी और महाप्रभु जब प्रकट हुए उन्होंने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की। इन अवतारों को बोलो कुछ अद्भुत लीला तो प्रकट करके दिखाइए तो ये फेल हो जाएंगे। तो चैतन्य महाप्रभु जी हालांकि भक्त के रूप में प्रकट हुए थे पर उन्होंने अपनी अद्भुत लीला भी प्रकट की जिसके द्वारा आप ये पहचान सकते हो कि वो स्वयं भगवान हैं। बचपन में भी उन्होंने अपनी अद्भुत लीला प्रकट की इसके हम तो संक्षेप में ही चर्चा करेंगे। आप महाप्रभु जी की लीलाओं का वर्णन दिन रात कर सकते हो। तीन प्रसिद्ध ग्रंथ हैं जिनके द्वारा आपको चैतन्य महाप्रभु जी के जीवन का ज्ञान प्राप्त होता है। एक है चैतन्य चरतमृत, जिसका अनुवाद श्री प्रभुपाद जी ने किया है। प्रभुपाद जी कहते थे गीता इज हाई स्कूल, भागवतम इज कॉलेज एंड चैतन्य चरतमृत इज पोस्ट ग्रेजुएट। तो चैतन्य चरतमृत में बड़ा गहरा सिद्धांत है और भगवान की लीलाओं का वर्णन है। एक और प्रसिद्ध ग्रंथ है चैतन्य भागवत, जिसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की है। यही चैतन्य भागवत पहले प्रकाशित हुआ था चैतन्य मंगल के नाम पर। तो चैतन्य मंगल के नाम पर जब प्रकाशित हुआ तो वृंदावन दास ठाकुर को पता लगा कि चैतन्य मंगल नाम का एक ग्रंथ लोचन दास ठाकुर ने प्रकाशित कर दिया। तो फिर उन्होंने नाम बदल दिया और चैतन्य मंगल को बना दिया चैतन्य भागवत। तो इसकी रचना वृंदावन दास ठाकुर ने की है और वृंदावन दास ठाकुर को व्यासदेव का अवतार माना जाता है। पिछले हफ्ते हम लोग नवद्वीप परिक्रमा में थे तो उस स्थान में भी गए जहाँ वृंदावन दास ठाकुर की मूर्तियों का दर्शन मिलता है। तो आज भी आप वृंदावन दास ठाकुर की मूर्तियों का दर्शन ले सकते हो नवद्वीप परिक्रमा के दौरान। और एक और ग्रंथ है चैतन्य मंगल, जिसकी रचना लोचन दास ठाकुर ने की है। तो इन तीन ग्रंथों के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु जी के लीलाओं उपदेश के विषय में ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। तो चैतन्य चरतमृत में भगवान के अनेक बाल लीलाओं का वर्णन है। जब भगवान छोटे ही थे उन्होंने अपनी दिव्य लीला प्रकट करना आरंभ कर दिया था। जब वो उन्होंने चलना क्रॉलिंग शुरू किया तो उनके फर्श पर विष्णु के चरणों के लक्षण प्रकट हो रहे थे। तो पहले तो उनके माता पिता ने सोचा शायद हमारे घर में जो दामोदर गोपाल की मूर्ति है ये उसके चरणों का निशाना है। उनके घर में था दामोदर गोपाल की मूर्ति। फिर उनकी माँ ने एक दिन दूध पिलाते हुए देखा, नहीं नहीं ये लक्षण तो मेरे बाप बेटे के चरणों में है। तो वो बड़े आश्चर्य हुए। जब भगवान प्रकट हुए थे उनके नाना जी नीलम्बरा चक्रवर्ती ने उनकी जन्मपत्री बनाई थी। प्राचीन समय में ये रिवाज था कि जन्मपत्री बनाते थे पैदाइशी पर। आजकल भी बनाते हैं आजकल वो कंप्यूटर में हर चीज। तो नीलम्बरा चक्रवर्ती ने उनकी जन्मपत्री बनाई थी और कहा सची माता जो उनकी बेटी थी, ये जो लड़का है आपका ये पूरे विश्व को संभालेगा, इसके लिए उसका एक नाम होगा विश्वम्भर। ये लड़का कोई साधारण लड़का नहीं है। फिर आगे उन्होंने ये भी कहा ये जो बालक है अलग अलग युगों में प्रकट हो चुका है। जैसे जब भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे तो गार्ग मुनि ने यह सूचना दी थी नंद महाराज को। तो नीलम्बर चक्रवर्ती ने कहा ये जो लड़का है अलग अलग युगों में प्रकट हो चुका है, मतलब कि भगवान अलग अलग युगों में प्रकट होते हैं अलग रंगों से, और ये जो लड़का है एक दिन सन्यास भी लेगा। तो ये जो सन्यास भी लेगा ये उन्होंने सची माता को नहीं बोला, क्योंकि उन सची माता को पता लग जाता कि उनका बेटा सन्यास लेगा तो वो घबरा जाएगी। वो ये जरूर बोला वो पूरे विश्व को संभालेगा। तो सची माता को थोड़ा अंदाजा तो था कि मेरा बेटा जो है साधारण बेटा नहीं। तो जब उन्होंने देखा ये विष्णु के चरणों के लक्षणों को उनके पुत्र के चरणों में तो बड़े प्रसन्न हुए। फिर एक समय भगवान जब छोटे ही थे एक दो साल के झेलू सांप के हुड में नाच रहे थे। हुड में क्या कह रहे हैं, पन में, पन के ऊपर नाच रहे थे। तो सारे माँ बाप घबरा गए झेल गुस्साम के सिर पर नाच रहे हैं, झेल कहीं वो क्या काट नहीं दे, जैसे भगवान कृष्ण ने कालिया सर्पेंट पर सांप पर नाचे थे वैसे नाचे और कुछ भी नहीं हुए। एक समय क्योंकि भगवान को उनके माता पिता ने गहनों के साथ सजाया हुआ था, तो एक समय चोरों ने उन्हें चुरा लिया और चोर बच्चे को उठाकर भाग रहे थे दूर इस विचार के साथ कि हम गहने चुरा लेंगे और बच्चे को मारेंगे मार देंगे। पर जहां भी वो भागते थे भगवान की कृपा से वापस जगन्नाथ मिश्र के घर में लौट आते थे। तो वो भाग रहे थे मान लो यहाँ दाने तरफ पर घुमा कर उनके घर के सामने पहुंच जाते थे। तो इस प्रकार वो चोर असफल हुए अपनी योजना में, इतने तंग आ गए कि बच्चे को वहीं छोड़ दिया। एक दिन एक ब्राह्मण आया था जगन्नाथ मिश्रा के घर में रहने के लिए। जगन्नाथ मिश्रा बकायदा संतों की सेवा करते थे, जैसे प्रभुपाद जी के पिता थे गौर मोहन डे, वो भी बकायदा संतों की सेवा करते थे, घर में उनको रहने का स्थान देते थे। तो ये ब्राह्मण को जगन्नाथ मिश्रा ने निमंत्रण दिया, आओ प्रसाद खाओ। ब्राह्मण ने प्रसाद बनाया और भगवान को भोग लगा रहा था तो निमाई उधर पहुंच गया, वो झूठा कर दिया। ब्राह्मण ने कहा क्या भगवान को भोग लगा रहा हूं झूठा कर दिया, तो उसको फिर से भोग तैयार करना पड़ा। दूसरी बार भोग तैयार किया फिर से झूठा कर दिया निमाई ने, तो उनके पिता ने इतना अपमान महसूस किया, ब्राह्मण हमारे घर में आए हैं और हम की सेवा के बजाय उनकी बेइज्जती कर रहे हैं। पिता ने अपने बेटे को दूरी पर एक कमरे में बंद कर दिया और सर लगभग रात के 11 बज गए थे 12 बज गए थे, घर के सब सदस्य सो गए और उन्होंने कहा, आप ब्राह्मण ने कहा ठीक है मैं आज भूखा सो जाता हूँ, भगवान की शायद इच्छा है कि आज मैं भोजन नहीं खाऊं। ब्राह्मण है कभी किसी को दोष नहीं देता, साधारण समाज में तो हम दोष देते रहते हैं तुम्हारे कारण मेरा ये नुकसान हुआ, ब्राह्मण किसी को दोष नहीं देता, वो सोचता है मेरी ही कमी है ये दुर्घटना बीती है। तो ब्राह्मण सोच रहा था मुझे सो जाना चाहिए भूखा, पर जगन्नाथ मिश्रा ने कहा नहीं नहीं, मैंने अपने शैतान बेटे को बंद कर दिया है दूरी पर एक कमरे में, अब बड़े शांति से तुम अपना भोजन तैयार करके भोग लगा सकते हो। तो तीसरी बार फिर उसने भोजन तैयार किया, तीसरी बार जब भोजन भोग लगा रहे थे भगवान को, निमाई फिर वहां पहुंच गए और जब तीसरी बार उन्होंने देखा निमाई को तो उस ब्राह्मण ने कहा फिर पहुंच गए तुम, तुम्हारे पिता ने कहा था तो बंद कर दिया। तो निमाई ने फिर कहा आप घबराते क्यों हो, आप ये भोग मुझे तो अर्पण कर रहे हो। तो ब्राह्मण कहने लगा विष्णु विष्णु विष्णु, ये लड़का देखो इतना बदतमीज है अपने आप को विष्णु बुला रहा है। जैसे उसने कहा विष्णु विष्णु विष्णु, निमाई ने अपना श्याम सुंदर का रूप प्रकट कर दिया, और जब निमाई ने श्याम सुंदर का रूप प्रकट किया तो वो ब्राह्मण बेहोश हो गया, ये तो सचमुच ही कृष्णा है। फिर निमाई ने वापस निमाई का रूप ग्रहण करके उस ब्राह्मण को एक आदेश दिया, कभी भी भविष्य में किसी को यह बोलना नहीं कि आपने रूप का दर्शन लिया है, क्योंकि अगर सबको पता लग जाता ये स्वयं भगवान है तो वो संबंध ही बिल्कुल अलग हो जाता। यशोदा माता उनके साथ ही जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए थे, भगवान की महामाया योगमय शक्ति द्वारा वो भगवान के असली स्वरूप को पहचान नहीं पाते। अगर यशोदा माता को शुरू से पता था कि मेरा बेटा स्वयं भगवान है तो उनको कुछ चिंता होती किसी चीज की? नहीं। तो भगवान ये नहीं चाहते थे कि लोगों को पता लग जाए कि वो स्वयं भगवान है। तो एक समय जब भगवान छोटे थे, एक पिल्ले को उठाकर घर ले आए थे, ये कथा चैतन्य मंगल में है। जब पिल्ले को ले आए घर में तो सच्ची माता ने कहा, क्या बेइज्जती, हम ब्राह्मण खानदान के हैं, हम कुत्तों को घर में रखेंगे, समाज के लोग क्या कहेंगे, हंसेंगे हमारे ऊपर, इसे पिल्ले को बाहर कर दो। माई ने कहा, अगर आप ये पिल्ले को बाहर करोगे तो मुझे भी बाहर जाना पड़ेगा। तो पिल्ले को घर में रखा, रस्सी से बांध दिया। एक दिन और दूसरे जो भगवान के साथी थे उन्होंने भगवान को दोष दिया, कहा देखो खेलते समय निमाई ने चापलूसी करके सबसे खूबसूरत पिल्ला उठा लिया और बदसूरत पिल्ले हमारे लिए छोड़ दिया। तो एक दिन जब निमाई गंगा में गए थे स्नान करने के लिए, हाँ, तो सच्ची माता ने पिल्ले की रस्सी खोल दी और पिल्ला घर से निकल गया। तो निमाई जब स्नान कर रहे थे उनके साथी आए भागे भागे, निमाई निमाई तुम्हारी माँ ने पिल्ले को घर से निकाल दिया। तो निमाई भागे भागे वापस आए। तो निमाई ने अपने भक्तों को भेजा, ढूंढो कहाँ है नवदेव में ये पिल्ला। तो ये पिल्ले को ढूंढने गए, जब ढूंढने गए तो उन्होंने देखा वो पिल्ला नवदेव शहर के बीच में कीर्तन कर रहा था, दो पैरों में नाच रहा था, दो हाथों को ऊपर उठाया हुआ था और हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। उसके आंसू बह रहे थे, बाल खड़े हो रहे थे, जो शुद्ध भक्ति के लक्षण है। और पूरा शहर में, पूरे शहर में ये सूचना फैल गई मिनटों में कि वो पिल्ला जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो शुद्ध भक्त बन गया है निमाई की कृपा से। और सब आए देखने के लिए उस पिल्ले को। वो सब ने कहा, ये जो निमाई है ये कहीं भगवान तो नहीं है, उसने एक पिल्ले को शुद्ध भक्त बना दिया। जब भगवान कृष्ण पृथ्वी पर थे बड़े प्रभावशाली बलवान असुर आए थे उनसे युद्ध करने के लिए, पूतना तीनावर्ता अगासुरा, पर सबका वध कर लिया भगवान ने। तो ब्रिजवासी सोच रहे थे कहीं हमारा बेटा नारायण तो नहीं है, ये कोई देवता तो नहीं है, लगता है इस पर देवताओं भगवान की खास कृपा है। तो जब नवदेव के लोगों ने देखा कि निमाई की संगत से पिल्ला शुद्ध भक्त बन गया है और फिर सबके सामने एक रथ आया भगवान का जिस पर ये पिल्ला चढ़ गया और सबको बाय बाय हरे कृष्णा बोल दे वो भगवान के धाम गया। तो पूरे गौरांगा गौरांगा गौरांगा। तो इस लीला के बाद गौरांगा की महिमा और भी फैल गई और लोग सोचने लगे कि ये देवता तो नहीं है। तो अगर आप में से कोई पिल्ला या कुत्ता रखना चाहे तो आपको पहले ये गारंटी लेनी पड़ेगी कि आप शुद्ध भक्त बनाओगे, हाँ नहीं तो मत ले रखना। तो ये संक्षेप में महाप्रभु जी के बाल की लीलाएं हैं। भगवान महाप्रभु की लीलाएं तो कई हैं, समय का अभाव है। तो छोटे समय छोटे उम्र में ही निमाई संस्कृत के विद्वान बन गए थे। 8 साल की उम्र में निमाई गंगाधर पंडित जो कि उस समय संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे उनके पाठशाला में संस्कृत सीखने गए। और जब निमाय संस्कृत सीख रहे थे तो बड़ी तेजी से जैसे ही अध्यापक को सिखाता था वो सीख जाते थे बड़ी थे। और छोटी उम्र में ही बड़े विद्वान बन गए थे, इसके लिए उनका नाम बन गया था पंडित। पैदाइशी में एक नाम उन्हें निमाई भी दिया था, सीता ठाकुरानी ने। सीता ठाकुरानी ने निमाई नाम इसलिए दिया, एक तो उनका जन्म हुआ था नीम के पेड़ के नीचे, दूसरा बंगाल में ये रिवाज था या विचार है कि नीम के पेड़ का पत्ता हो या नीम से संबंधित नाम हो तो कोई बुरी नजर नहीं होगी। और महाप्रभु के प्रकट होने से पहले उनके भाई विश्वरूप प्रकट हुए थे, उससे पहले 8 बहनें प्रकट हुई थी जो प्रकट होते ही जिन्होंने शरीर त्याग दिया था। तो चिंता थी निमाई के भविष्य की, इसलिए उनको नाम दिया था निमाई। एक और नाम दिया था गौरहरी। गौरहरी नाम क्यों दिया था? एक तो उनका जो रंग था गोल्डन इन कॉम्प्लेक्शन, दूसरा हरि का नाम सुनते ही वो प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि जब वो छोटे भी थे अक्सर बच्चे रोना बंद करते हैं दूध पिलाने पर, पर निमाई रोना बंद करते थे जब वो हरे कृष्ण को सुनते थे, तो उनको नाम दिया था गौर हरि। इस प्रकार निमाई के हजारों नाम थे। तो छोटी उम्र में ही वो संस्कृत के विद्वान बन गए थे। और 11 साल की आयु में उन्होंने अपना संस्कृत का महाविद्यालय खोला था। और आज से 500 साल पूर्व भारत का सबसे धनी राज्य था बंगाल का राज्य, और बंगाल के राज्य में सबसे प्रसिद्ध शहर था नवद्वीप का शहर। नवद्वीप का जो शहर है 500 साल पहले वो द इंटेलेक्चुअल कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब पूरे विश्व के जो सबसे बड़े विद्वान थे वो कहाँ रहते थे? नवद्वीप में। तो 11 साल की आयु में उन्होंने संस्कृत का एक पाठ अपना पाठशाला खोल दिया था। केशव कश्मीरी उस समय के बड़े प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के विद्वान थे। सारस्वती देवी के खास कृपा थी केशव कश्मीरी के ऊपर। और केशव कश्मीरी ने भारत के सब विद्वानों को हरा दिया था, कोई उनके सामने खड़े होने को भी तैयार नहीं था। जैसे आजकल वर्ल्ड कप होता है, ये होता है, क्रिकेट कप होता है, उन दिनों में एक इंटेलेक्चुअल कंपटीशन होता था संस्कृत का डिबेट, और उसको देखने के लिए हजारों लोग आते थे। तो केशव कश्मीरी ने सबको हरा दिया था। और जब वो हराता था तो उनसे एक पत्र ले लेता था कि मैं हार गया था केशव कश्मीरी। कई बार तो लोग उनके सामने खड़े भी नहीं होते थे, कह रहे नहीं नहीं आपके सामने हम नहीं आएंगे, ठीक है फिर मुझे एक विजय का पत्र दे दो। तो कहीं सबसे उन्होंने, जैसे आप देखते हो आजकल लोग सर्टिफिकेट इकट्ठा करते हैं दीवारों में छपा, तो केशव कश्मीरी ने लगभग सबको हराया हुआ था भारत में। उनके नाम के सामने कोई खड़ा भी नहीं होता था। तो केशव कश्मीरी ने सूचना भेजी नवद्वीप में कि मैं आपके शहर के सबसे प्रसिद्ध प्रतिनिधि के साथ संस्कृत का डिबेट करना चाहता हूं। तो नवद्वीप के पंडितों ने सभा बुलाई, केशव कश्मीरी हमारे शहर में आना चाहता है हमारी बेइज्जती करने के लिए, कौन उसके सामने लड़ेगा, कौन उसके सामने अभी संसार का डिबेट करेगा। सब घबरा गए, सबने कहा मैं तो तैयार नहीं हूं, हम तो तैयार नहीं है। फिर उन्होंने सोचा कि हम निमाई पंडित को आगे कर देते हैं, वो विद्वान भी है और सबसे छोटा भी था 11 साल का। तो उन्होंने सोचा कि अगर केशव कश्मीरी ने निमाई को हरा दिया तो हम कहेंगे आखिर हमारे शहर के बच्चे को हराया, हमें थोड़ी हराया। और अगर निमाई ने उन्हें हरा दिया तो हम कहेंगे अगर बच्चा हमारे शहर का उसे हरा सकता है, हमारी तो बात ही छोड़ो। तो निमाई पंडित गंगा के तट पर अपने विद्यार्थियों को शिक्षा दे रहे थे, क्योंकि प्राचीन समय में शिक्षा दी जाती थी पेड़ों के नीचे, आजकल कहाँ है ये सुविधा, है ना। और केशव कश्मीरी बैंड बाजा के साथ पहुंचे नवद्वीप में, जैसे राजनीतिक नेता चलते हैं आगे तो पीछे उनके चमचे चलते हैं, तो केशव कश्मीरी आगे आगे चल रहे थे, पीछे बैंड बाजा झंडा, केशव कश्मीरी के जय हो। तो केशव कश्मीरी पहुंचे नवद्वीप में गंगा के तट पर, उन्होंने देखा ये निमाई संस्कृत की शिक्षा दे रहा है। तो केशव कश्मीरी ने पूछा क्या आप ही हो इस शहर के माने हुए पंडित निमाई पंडित? मैं कहा हाँ, मुझे निमाई के नाम से लोग जानते हैं। आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है? निमाई ने कहा मेरी प्रशंसा? मैं तो संस्कृत का एक शब्द भी ठीक रूप से उच्चारण नहीं कर सकता, मेरी प्रशंसा क्यों करने लोग? उन्होंने कहा मैं हूं केशव कश्मीरी। निमाई ने कहा कि आपकी तो बड़ी तारीफ सुनी है। तो पहले केशव कश्मीरी ने कहा कुछ नमूना दो, उदाहरण दो तुम्हारी रचना का। निमाई ने कहा मैं तो मूर्ख हूं, आप उदाहरण दीजिए। तो केशव कश्मीरी ने एक घंटे में 100 श्लोकों का उच्चारण किया गंगा नदी की प्रशंसा करते हुए, इन 1 आवर, एक घंटे में। इतने बड़े विद्वान थे केशव कश्मीरी। और फिर निमाई से पूछा फिर कैसे लगा तुम्हें? निमाई ने कहा बहुत सुंदर, पर इन इन श्लोकों में ये कमी थी। और निमाई ने 150 श्लोकों को सुना दिया, सारे 150 श्लोकों को एक बार सुनने में कंठस्थ कर लिया। जो व्यक्ति एक बार सुनने में किसी विषय को कंठस्थ कर ले उसे श्रुति धरा कहा जाता है संस्कृत में। जैसे भागवतम का उपदेश शुकदेव गोस्वामी दे रहे थे परीक्षित महाराज को, उस सभा में हजारों और संत उपस्थित थे जिनमें एक थे सूता गोस्वामी। तो सूता गोस्वामी ने एक बार सुनने से ही 18,000 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया। तो जब नमश्रणीय में संतों ने विनती की कि आप हमें मार्गदर्शन दीजिए, सूतक स्वामी ने वही 18,000 श्लोकों को सुना दिया जो कि उन्होंने एक बार सुनने से कंठस्थ कर लिया था। तो जो एक बार सुनने से कंठस्थ कर लेते कहा जाता है। तो निमाई ने 100 श्लोकों को एक बार सुनने से ही कंठस्थ कर लिया था। और जब केशव कश्मीरी ने एक सुना कि निमाई ने एक बार सुनने से ही 100 श्लोकों को कंठस्थ कर लिया, वो आश्चर्य हो गए। उन्होंने कहा ये असंभव है, कोई साधारण व्यक्ति एक बार सुनने में 100 श्लोकों को कंठस्थ कर ले। उन्होंने कहा ये व्यक्ति जरूर कोई खास व्यक्ति है। तो निमाई ने केशव कश्मीरी की रचना में जो कमियां थीं उसको सुनाया, और जब केशव कश्मीरी को सुना रहे थे कमियां, तो केशव कश्मीरी उसका उत्तर नहीं दे पाए। तो केशव कश्मीरी जो निमाई के विद्यार्थी थे ना, वो जो हंसने लगे, जवाब नहीं दे पा रहा। पर निमाई ने एकदम रोक दिया, निमाई ने रोक दिया। निमाई ये सिखाना चाहते थे अपने विद्यार्थियों को कि हमें हरे के साथ आदर से व्यवहार करना चाहिए। तो निमाई ने कहा, आज केशव कश्मीरी थके हुए हैं, कल इसका उत्तर देंगे। तो केशव कश्मीरी अपने घर लौटे शाम को, और सारस्वती देवी के वो उपासक थे, सारस्वती देवी की प्रार्थना की और कहा, आप हमेशा मेरे माध्यम से ज्ञान दे रहे थे, आपने हमेशा मेरी सुरक्षा की, पर आज जब वो छोटे लड़के ने मेरी कमजोरियों को निकाला, मैं उत्तर नहीं दे पाया क्योंकि आपकी कृपा नहीं थी। तो सारस्वती दीजे ने कहा, ये जो बालक है निमाय पंडित, ये साधारण विद्या साधारण बालक नहीं, ये स्वयं भगवान है, ये स्वयं भगवान है, और मैं सहयोग नहीं दे सकती, तुम जाके उनके शरणागत हो जाओ। तो अगले दिन केशव कश्मीरी आए और निमाई के शरणागत हो गए और भाग बन गए। निमाई जब ये पाठशाला चला रहे थे तो रोज जब पाठशाला में जाते थे जब रोज पाठशाला में जाते थे तो रुकते थे एक केले वाले की दुकान में। एक भक्त था निमाई का जिसका नाम था खोला बेचर श्रीराम। उनका धंधा था खोल का केले के पत्तों के प्याले बनाने, और लोग वो खरीदते थे गंगा नदी की सेवा के संबंधित। और साथ में खोचो खोला बेचर श्रीराम सब्जियां केले भी बेचता था। और भौतिक दृष्टि से खोला बेचर श्रीराम धनी नहीं थे, बहुत गरीब, रहने के लिए एक कमरा था बस, और इस कमरे में कोई छत भी नहीं। तो जब बारिश गिरती थी तो बारिश से बचने के लिए केशव कश्मीरी खोला बेचर श्रीराम दीवार के साथ खड़े हो जाते थे ऐसे कि हम भीगे नहीं। उन्होंने छत लगाने के भी पैसे नहीं थे, दीवार के साथ खड़े हो जाते थे, और दिन रात हरि नाम का उच्चारण। और खोला बेचर श्रीराम के पास एक ही धोती थी, और वो एक धोती में भी 11 छेक, और उनके पूरे घर में एक ही बर्तन था, उसी एक बर्तन में वो पानी पीते थे, उसी में भोजन बनाते थे, उसी में दाल पीते थे वगैरह। चैतन्य भागवत में कहा गया है वो जो एक बर्तन था खोले बचे श्रीदा के घर में इतना पुराना था कि कोई चोर भी उसे छुएगा नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, अंदाजा लगा सकते हो कितने गरीब थे खोले बचे श्रीदा। जब भी 50% पैसा अपनी आमदन का वो खर्चते थे किसमें, गंगा की सेवा में। तो निमाई पंडित रोज उनकी दुकान में आते थे। और निमाई कहता था क्या भाव है केले का, तो कहता एक पैसा दर्जन। नहीं, तुम बहुत ज्यादा रकम लगा रहे हो, इसका भाव आधा होना चाहिए। तो खुले बच्चे सीधा कहते थे तुम मेरी दुकान में क्यों आते हो, दूसरी दुकान से ले लो सौदा, रोज आके मेरा सिर खाते हो। तो निमाई कहता था मैं दूसरी दुकान में क्यों जाऊं, मैंने तुम्हारी दुकान में ही आना है, तुम स्टेडी सप्लायर हो। मैंने तो रोज निमाई वहां आता था। फिर निमाई कहता था उन्हें तुम बहुत ज्यादा नफा कमा रहे हो, मुझे पता है तुम बहुत धनी हो। तो खुले बच्चे श्रीधर कहता था अगर तुम्हें लगता है कि मैं धनी हूं तो मेरे घर में आके देखो मेरे घर में कितना धन है मेरे पास। तो खुले बच्चे श्रीधर तो निमाई कहते थे तुम्हारा जो धन है वो एक दिन मैं विश्व को दिखाऊंगा वो धन। तो इस प्रकार दोनों का बड़ा गहरा संबंध था। और खोला बेटे सीधा 50% आमदन खर्चते थे किसमें, गंगा की सेवा में। एक समय निमाई ने अपना महाप्रकाश का रूप प्रकट किया शिवास आंगन में। शिवास आंगन इस्कॉन के मायापुर के मंदिर के निकट में ही है, जहां की निमाई ने अपना समकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था। तो निमाई ने ये महाप्रकाश का रूप प्रकट किया था 24 घंटों के लिए, पर केवल अपने प्रसिद्ध भक्तों को ही ये खास दर्शन दिया था, सबको नहीं। तो महाप्रभु ने अपने प्रतिनिधि को बोला जाओ खोला बेटा श्रीधर को भी लाओ। और खोला बेटा श्रीधर के घर को ढूंढना कठिन नहीं है, तुम हर घर के सामने से गुजरना और जिस घर में तुम सुनोगे हरे कृष्णा वो खोला बेटा श्रीधर का घर है। ये खोला बेटा श्रीधर 24 घंटे हरे नाम का उच्चारण करते थे, लगभग जब दुकान में होते थे जब भी हरे कृष्णा, रात को सोते भी नहीं थे, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम। तो जो खोले बच्चे सीधा के जो पड़ोसी थे वो कहते थे ये इतना गरीब है कि रात को भूत सताते हैं तो ये खुद भी नहीं सोता, हमें भी सोने नहीं देता। तो सारे पड़ोसी खोला बच्चे श्रीधर के दुश्मन बन गए थे, क्योंकि खुद कहते खुद भी नहीं सोता हमें भी सोने नहीं देता। तो खोला बच्चे श्रीधर निमाई रोज उनकी दुकान में जाते थे जब वो सौदा करते थे। तो एक दिन निमाई ने उन्हें कहा खोला बच्चे श्रीधर तुम 50% आमदन खर्च रहे हो गंगा की नदी में, गंगा की सेवा में, पर ये गंगा मेरे चरणों से आ रही है तुम जानते नहीं। तो खोले बच्चे श्रीधर ने कहा विष्णु विष्णु विष्णु, देखो कितना पापी है अपने आप को विष्णु बुला रहा है। तो जब भगवान ने अपना दिव्य रूप प्रकट किया और अपने प्रसिद्ध भक्तों को निमंत्रण दिया, और जब खोले बच्चे श्रीधर वहां आए तो भगवान ने उनसे कहा खोले बच्चे श्रीधर तुम्हें क्या वर चाहिए, पूरे पृथ्वी का धन ऐश्वर्य। खोले बच्चे श्रीधर ने जब देखा भगवान का रूप तो उन्हें समझ आया जो भगवान कहते थे निमाई ने कहा कि मैं ही हूं विष्णु, ये सच है। तो खोले बच्चे श्रीधर ने कहा कि अगर आप मुझे एक वर देना चाहते हो तो ये वर दीजिए कि हर जन्म में आप मेरी दुकान में आओ सौदा करने के लिए, और हर जन्म में मुझे आपका साथ मिले। तो खोल बेटे श्रीधर को भगवान ने कहा, जो धन चाहिए, पूरे पृथ्वी का धन चाहिए, वो मैं देने को तैयार हूं। पर खोल बेटे श्रीधर ने क्या मांगा? केवल शुद्ध भक्ति। तो ये है भक्त का लक्षण। वो यही खोला बेटे श्रीधर ने, जब महाप्रभु ने संन्यास भी लिया तो महाप्रभु जी को उन्होंने एक पंपकिन दिया था, जो कि उनकी माँ ने उन दूध के साथ बनाया था महाप्रभु के लिए संन्यास लेने से पहले। तो खोला बेटे श्रीधर बहुत ऊंचे कोटि के भक्त है, जिनका निमाई पंदर के साथ बड़ा गहरा संबंध था। चैतन्य महाप्रभु जी ने पहले तो बड़ा शरारती का व्यवहार प्रकट किया जब वो छोटे थे, फिर संस्कृत के विद्वान बने, फिर उसके बाद उन्होंने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया। संकीर्तन आंदोलन उन्होंने आरंभ किया शिवास आंगन में। हम लोग जब परिक्रम करते हैं तो जैसे इस समय इस साल चार पार्टी थी, एक बंगाली, एक हिंदी, एक रशियन, एक अंतर्राष्ट्रीय, पर सबका मिलन होता है शिवा संगन में। तो शिवा संगन में चैतन्य महाप्रभु जी ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया था, और उस संकीर्तन आंदोलन में जब आरंभ किया पूरे नवद्वीप में ये एक सूचना फैल गई और सब कहने लगे अपने माई ने संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया है। पर जो ब्राह्मण थे नवद्वीप में, उनके हृदय में घबराहट हो गई। जो स्मार्ता ब्राह्मण थे उन्होंने कहा, अरे माई ने संकीर्तन आंदोलन शुरू किया है, अब लोग कर्म कर्ण की परवाह नहीं करेंगे, हमारी परवाह नहीं करेंगे, हमारा धंधा खत्म हो जाएगा। तो इन ब्राह्मणों ने छानकाजी, जो उस समय जैसे मैंने कहा मुसलमानों का शासन था, और जो छानकाजी था वो नवाब हुसैन शाह जो बंगाल के राजा थे उनके प्रतिनिधि थे, वो सब ब्राह्मण गए छानकाजी के पास, कहने लगे ये निमाई फंदे ने ये संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया है जो कि हिंदू धर्म के विरोध में है, इसे बंद करो। फिर मुसलमान प्रतिनिधि भी जाने लगे, मुसलमानों ने कहा चांदकाजी से, अरे अगर हम ये निमाई पंडित के हरि नाम को संकीर्तन को बंद नहीं करेंगे तो सारे मुसलमान हिंदू बन जाएंगे, इसे बंद करो। और एक मुसलमान था दाढ़ी वाला, तो बार बार चांदकाजी के पास जाता था, कहता था बंद करो बंद करो, निमाई पंडित के संकीर्तन आंदोलन को बंद करो। तो चांदकाजी ने कहा, तुम दिन रात कहते हो बंद करो बंद करो, पर जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ, मैं देखता तो तुम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, ये क्या, अगर तुम्हारी इतनी नफरत है तुम्हें बार बार हरे कृष्ण क्यों बोलते हो? तो उसने कहा, ये बात सत्य है, जब से मेरा परिचय हुआ है यह हरि नाम के साथ, यह हरि नाम जीभ से निकलता ही नहीं, कई बार मैंने कोशिश कर निकालने के लिए निकलता ही नहीं। तो छानकाजी ने पहले तो प्रतिनिधियों को भेजा सूचना के साथ, बंद करो नहीं तो हम सबको मुसलमान बना देंगे। प्राचीन समय में मुसलमान बनना बड़ा आसान था, अगर आपने किसी मुसलमान के यहाँ नौकरी कर ली तो मुसलमान बन गए, अगर आपने किसी मुसलमान के घर में खाना खा लिया तो मुसलमान बन गए, अगर किसी मुसलमान के बाल्टी से एक बूंद पानी भी गिर गया पर तो मुसलमान बन गए। एक कथा पढ़ते हो चैतन्य चरितमृत में सुबुद्धि रॉय की। सुबुद्धि रॉय एक समय एक बड़े जमींदार थे बंगाल के, उनके पास एक नौकर था जिसका नाम था नवाब उस वक्त नवाब नहीं हुसैन। तो एक दिन हुसैन ने कुछ गलती की थी कुएं को खोते समय, तो सुबुद्दीन रॉय ने प्रेम से एक विप लगाई थी जिसके द्वारा एक निशाना गिर गया था उनकी पीठ में। चापलूसी करके ये हुसैन नवाब बन गया पूरे बंगाल का और फिर इसका नाम बदल दिया नवाब हुसैन शाह। और एक दिन और सुबुद्दीन रॉय जो बहुत बड़ा जमींदार था वो थोड़ा गरीब बन गया। तो एक दिन नवाब हुसैन शाह की पत्नी ने देखा एक निशाना पीछे पति के पीठ में, उन्होंने कहा अरे ये कहां से आ गया। तो नवाब हुसैन शाह ने कहा जब मैं छोटा था तो मैं एक सुबुद्दीन रॉय जमींदार के घर में नौकर था और मैंने गलती की थी जिसके कारण उन्होंने प्रेम से ये चाबुक मारा था जिसकी निशानी है। तो पत्नी ने कहा अब तुम राजा बन गए हो मार दो उसे बदला लो। उसने कहा मैं बदला कैसे लूं, ये तो उसने तो मुझे एक बेटे जैसे पाला था और ये जो निशाना ये भी प्रेम का निशाना है, मैं उसे नहीं मार सकता। तो पत्नी ने कहा अच्छा कम से कम मुसलमान तो बना दो मारना नहीं चाहते मुसलमान बना दो। तो हुसैन ने कहा अच्छा ठीक है मुसलमान बना दे। तो सुबुद्दीन रॉय को उन्होंने बुलाया, उन्होंने बाल्टी से पानी फेंका वो मुसलमान। तो सुबुद्दीन रॉय के घर वालों को जब सूचना मिली तो उन्होंने कहा घर वालों ने अब तो तुम घर में नहीं रह सकते। तो सुबुद्दीन रॉय कई ब्राह्मणों के पास गए बनारस में, पूछने लगे अभी स्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो कईयों ने तो कहा उबलता हुआ घी पी के आत्महत्या कर लो, कई ब्राह्मणों ने कहा। फिर सुबुद्दीन रॉय आए चैतन्य महाप्रभु के पास और उनसे पूछने लगे मुझे क्या करना चाहिए इस स्थिति में। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा वृंदावन में जाओ और हरे नाम का उच्चारण कर। फिर सुबुद्दीन रॉय वृंदावन में आए और वहां छोटा सा धंधा था जिसमें से वो 2-3 पैसा महीने में कमाते थे और आधी से ज्यादा रकम खर्च रहे थे ओरी और बंगाली जो वैष्णव और वैष्णवी आते थे वृंदावन में उनकी सेवा में। तो जब चैतन्य जब महाप्रभु ने अपना संकीर्तन आंदोलन आरंभ किया तो एक तरफ से कई हिंदू ब्राह्मणों ने विरोध किया, एक तरफ से मुसलमानों ने विरोध किया। तो चंदकारी ने सूचना भेजी थी रोक दो इस संकीर्तन को, महाप्रभु ने कहा नहीं तो करते गए। तो एक दिन वहां पर ये हुसैन राज चंदकारी ने कई सिपाही भेजे जिन्होंने मृदंगा तोड़ दिया और सब और सबको कहा अगर हमने एक बार फिर से तुम लोग को ये कीर्तन करते हुए देखा तो हम तुम सबको मुसलमान बना देंगे। तो सारे भक्त घबरा गए, घबरा कर आए महाप्रभु के पास और महाप्रभु के पास घबरा कर जो दुर्घटना बीती थी उसकी सूचना दी। तो महाप्रभु ने 1,00,000 भक्तों को इकट्ठा किया मिनटों में और 1,00,000 भक्तों के साथ एक बड़े मोर्चे को लेकर कहां गए चंदकाजी के घर महल पर पहुंचे। चंदकाजी ने जब देखा दूर से इतना बड़ा मोर्चा आ रहा है तो घबरा गए और छुप गए। पर ने प्रभा जी कहते हैं हम भारत में कहते हैं ना महात्मा गांधी द फाउंडर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, प्रभा जी कहते हैं एक्चुअली लॉर्ड चैतन्य उन्होंने सबसे पहली बार ऑर्गेनाइज किया था पीसफुल नॉन वायलेंट मूवमेंट। तो चंदकाजी के घर में एक विनिमाई पंडित पहुंचे अपने भक्तों के साथ, उन दोनों का वार्तालाप हुआ। चैतन्य महाप्रभु ने कहा, ये क्या धर्म है जिसमें गाय माता का वध किया जाता है, क्योंकि हमारी अनेक माताओं में एक, सात माताओं में एक माता गाय माता है। तो जानकारी ने स्वीकार किया कि हमारे धर्म में कई त्रुटियां रह गई हैं। और जानकारी ने कहा कि जिस दिन मैंने अपने प्रतिनिधियों को भेजा था तुम्हारे मृदंग को तोड़ने के लिए, उस दिन रात को मुझे एक सपना आया था जिसमें एक शेर ने तेज नाखून के साथ मेरी छाती को चीरा, ये देखो निशाना, और कहा अगर तुम भविष्य में निमाई पंडित के समकीर्तन आंदोलन को रोकोगे तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तो ये चंदकाजी इतना घबरा गया था, और चंदकाजी ने फिर कहा कि मैं अपने भविष्य के प्रतिनिधियों को आदेश देता हूं, क्या, कि कभी भी तुम्हारे समकीर्तन आंदोलन को नहीं रोके। तो निमाई पंडित ने लगभग 8 घंटे के लिए एक साथ हरि नाम संकीर्तन किया था, और 8 घंटे संकीर्तन करने के बाद उन्हें थोड़ी प्यास लगी। जब प्यास लगे तो पानी पीने के लिए कहां गए, खोलवज श्रीदार की कुटिया में, और खोलवज श्रीदार की कुटिया में कितने बर्तन थे, एक ही बर्तन। तो खोलवज श्रीदार की कुटिया में निमाई पंडित गए और वो एक प्याला लेकर पानी पीने लगे। जैसे प्यानी पानी पीने लगे, खोलवज श्रीदार ने चिल्लाकर कहा, नहीं, ये मेरा झूठा बर्तन है, इसमें आप नहीं पी सकते। और महाप्रभु ने कहा, मैं इस प्याले से पीकर अपने आप को शुद्ध बना रहा हूं। उन्होंने खोलवज श्रीदार को इतना आदर दिया, हाँ ये मेरी पवित्रता के लिए मैं ये पानी पी रहा हूं। और फिर उन्होंने जबरदस्ती उसी प्याले से पानी पिया। तो श्रीवास आंगन में कई प्रसिद्ध लीलाएं बीती हैं भगवान की। वहां भगवान कीर्तन करते थे, सारी रात कीर्तन होता था, सारी रात बाद 16-16 घंटे कीर्तन एक साथ। और चैतन्य महाप्रभु केवल उस सभा में जो उनके प्रसिद्ध प्रिय भक्त थे उन्हें अंदर आने का अधिकार था, बाकियों को नहीं। एक ब्राह्मण था जो केवल दूध और फल पर जी रहा था, तो रोज आकर श्रीवास को कह रहा था, मुझे अंदर आने दो ना महाप्रभु का कीर्तन देखने के लिए। और वो श्रीवास कहते, नहीं, मुझे अधिकार नहीं है किसी को छोड़ने का, केवल जो महाप्रभु ने चुने वही भक्त आ सकते हैं। तो एक दिन वो इतनी जिद कर रहा था, तो श्रीवास ने, अच्छा ठीक है, तुम देखो, पर ये जो दरवाजा है इसमें छोटा सा छेक है, तुम इस छेक के पीछे खड़े होकर देखो वो छेक से, और क्योंकि निमाई ऐसे आपको देख नहीं सकेंगे। और श्रीवास की एक सास थी, उसको भी अंदर आने दिया। तो निमाई हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे श्रीवास के पंडित के घर में, और एकदम उन्होंने रोक दिया। उन्होंने कहा, आज हमारी सभा में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे नहीं होना चाहिए। तो श्रीवास घबरा गए। हाँ, एक ब्राह्मण था जो कि बड़ा तपस्वी था, जिसने कि जो सिर्फ दूध और फल पर जीरा है, जिसको मैंने अधिकार दिया, ये आपका संकीर्तन का दर्शन लेंगे। महाप्रभु ने कहा, केवल दूध और फल पीने से थोड़ी भक्ति आती है, भक्ति की भावना होनी चाहिए, वही व्यक्ति मेरे दिव्य रूप का दर्शन ले सकता है। ये जो ब्राह्मण था, तपस्वी था, पर इसमें भक्ति योग का भाव नहीं था। तो महाप्रभु ने कहा कि केवल तुम दूध लोगे, फल लोगे और पर भक्ति योग का भाव नहीं तो क्या फायदा। फिर महाप्रभु जी कृपा से उस ब्राह्मण में भक्ति योग का भाव प्रकट हो गया और वो भी भक्त बन गया। तो एक ब्राह्मण था महाप्रभु के घर के सामने, श्रीवास के घर के सामने, जिनका नाम था, एक ब्राह्मण था जिसके नाम था गोपाल ब्राह्मण, जिसके मन में बड़ी ईर्ष्या थी। ये ब्राह्मण कहता था चैतन्य महाप्रभु को, यानी वो ब्राह्मण के मन में बिच, वो श्रीवास का पड़ोसी था, तो वो कहता था श्रीवास को इतना आदर मिल रहा है, चैतन्य महाप्रभु जी रोज उसके घर में आते हैं, हरि नाम संकीर्तन करते हैं, पूरा माय नवद्वीप श्रीवास का धूम गुणगान कर रहा है, तो इसके घर हृदय में ईर्ष्या थी, द्वेष था। ईर्ष्या और द्वेष हमारे आध्यात्मिक जीवन के शत्रु हैं। काम क्रोध लोभ मोह मन में ईर्ष्या द्वेष जब तक रहेगा भगवान हमारे हृदय में निवास नहीं करते। तो ये ब्राह्मण ने श्रीवास के घर के सामने, दरवाजे के सामने शराब की बोतल रख दी और दूसरा सामान जिससे दुर्गा जी की पूजा की जाती है, और अगले दिन सुबह जब श्रीवास ने दरवाजा खोला तो देखा ओ शराब की बोतल और ये सब मस्त दुर्गा की पूजा का सामान। तो उन्होंने पड़ोसियों को बुलाकर कहा पड़ोसी देखो मैं तुम सबको धोखा दे रहा था, मैं कृष्णा का भक्त नहीं हूं, मैं हूं दुर्गा का भक्त। तो पड़ोसी ने कहा नहीं ये किसी शैतान की हरकत है, और उन्होंने गोबर से और गाय के मूत्र से पूरे स्थान को साफ कर दिया। ये जो ब्राह्मण जिसके हृदय में ये ईर्ष्या थी उसको कोढ़ की बीमारी हो गई, लेप्रसी, कोढ़ की बीमारी हो गई और वो बहुत बीमार हो गया। वो महाप्रभु को मिला, महाप्रभु से कहने लगा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके भक्त की के हृदय में ईर्ष्या रखी थी। महाप्रभु ने कहा तुम्हें हजारों साल नरक में तड़फना चाहिए श्रीवास के प्रति ईर्ष्या रखने के कारण। तो ये ब्राह्मण तड़फ से गया, तड़फ से गया। फिर जब निमाई संन्यास लेकर लौटे, निमाई ने कटवा में संन्यास लिया था केशव भारती से, तो ये ब्राह्मण फिर से उन्हें मिला। तो इस ब्राह्मण ने फिर से महाप्रभु से विनती की मैंने गलती की मुझे माफ कर दो, अभी हजारों कई सालों से मैं तड़फ रहा हूं। तो निमाई ने कहा मैं नहीं तुम्हें माफ कर सकता, तुम जाओ श्रीवास के चरणों में। फिर निमाई गए श्रीवास के चरणों में और श्रीवास ने उन्हें माफ किया और श्रीवास की कृपा से वो माफ हुआ। तो इस घटना के द्वारा निमाई ने हमें क्या संदेश दिया कि हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। इस ब्राह्मण के हृदय में ईर्ष्या थी, उसने वैष्णव अपराध किया जिसका क्या परिणाम हुआ, तुरंत ही उसे कोढ़ की बीमारी हो गई। इस विषय में निमाई ने एक और उदाहरण दिया, निमाई सब पर दया की दृष्टि से कृपा बरस रहे थे, तो भक्त निमाई को कहते थे आप सब पर दया कर रहे हो, अपनी माँ पर दया क्यों नहीं कर रहे। सच्ची माता के हृदय में अद्वैताचार्य के प्रति थोड़ा विरोध था। महाप्रभु के प्रकट होने से पहले अद्वैताचार्य और हरिदास बकायदा प्रार्थना कर रहे थे। अद्वैताचार्य महाविष्णु के अवतार हैं, और जब अद्वैताचार्य और हरिदास ने देखा समाज की स्थिति, तो अद्वैताचार्य शालक नाम शीला की पूजा कर रहे थे गंगा जल के साथ, और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे आप कृपा करके प्रकट हो पतितों का उद्धार करने के लिए, और उनकी प्रार्थना के उत्तर में भगवान प्रकट हुए चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में। तो अद्वैताचार्य तो सच्ची माता का थोड़ा क्रोध था अद्वैताचार्य के प्रति। वो सोचती थी मेरा बड़ा बेटा विश्वरूप उसे घर छोड़ा अद्वैता के प्रभाव से, और मेरा छोटा बेटा भी संन्यास ले लिया अद्वैता के प्रभाव से। ये अद्वैता नहीं, ये द्वैता है। तो उनके मन में सदैव थोड़ा सा क्रोध था। तो जब भी भक्त चैतन्य महाप्रभु कहते थे आप सब पर दया कर रहे हो अपनी माँ पर क्यों नहीं कर रहे, तो वो कहते थे मेरी माँ ने अपराध किया है, उनके मन में गलत भाव है। तो जब ये सूचना दी जाती थी अद्वैताचार्य को, तो अद्वैताचार्य कहते थे ये कैसे संभव है, वो सच्ची माता तो भगवान की माँ है, उनके कैसे संभव हो सकता है कि वो कभी भी गलत भाव रखे। तो एक दिन जब भगवान ने अपना भगवान दिव्य रूप प्रकट किया था, अद्वैताचार्य प्रणाम कर रहे थे, तो सच्ची माता पीछे से आई, उनके चरणों की धूल लेकर अपने सिर पर लगाया। तो जब भगवान ने देखा कि सच्ची माता ने अद्वैताचार्य के चरणों की धूल को लेकर सिर पर लगाया, तो बड़े खुश हो गए। फिर उन्होंने कहा अब मैं अपनी माँ को कृपा दूंगा। तो कहने का तात्पर्य है भक्ति के मार्ग में हमें वैष्णव अपराध से बचना चाहिए। वैष्णव अपराध से बचोगे तो हरि नाम का पूरा लाभ आएगा। बहुत जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन तब तन भाया कृष्ण पदे प्रेम धना। और अगर आप वैष्णव अपराध करोगे तो भक्ति का पूरा लाभ नहीं आएगा। तो चैतन्य महाप्रभु जी की अनेक लीलाएं हैं, शाम को भी थोड़ी चर्चा होगी, पर मुझे मीना रोड भी जाना है लेक्चर देने। तो हमें आज शुभ दिन पर चैतन्य महाप्रभु जी से ये प्रार्थना करनी चाहिए क्या कि हमें भी उनकी कृपा प्राप्त हो कि हम उनके आदेश के अनुसार अपने जीवन को भगवान की सेवा में समर्पण कर सकें। भगवान का क्या आदेश है गीता में, सर्व धर्म परित्यज्य माम एकम हम त्वम सर्व पापे मोक्षामि मां सुजा। तो ये आप सबका भाव है। और चैतन्य महाप्रभु जी ने क्या कहा, पृथ्वी पे आचे जगत नगर अधिकाम, जितने नगर गांव में सब जगह क्या होगा, यह हरि नाम होगा। हमारे जो गौड़िया वैष्णव थे वो भी 50 साल पहले तक सोच रहे थे हाँ ये महाप्रभु की भविष्यवाणी तो है पर ये सत्य नहीं निकलेगी, कलियुग बहुत गहरा हो गया है। भक्ति सिद्धांत जी ने भी कई प्रतिनिधियों को भेजा था पश्चिम देशों में कृष्ण भक्ति की स्थापना के लिए, पर बिना सफलता के वो लौट गए थे। तो कई सोच रहे थे हाँ ये संभव नहीं हो पाएगा, कलियुग बहुत गहरा है, पर प्रभुपाद जी को पूरा विश्वास था क्योंकि उनके गुरु महाराज ने आदेश दिया था। तो प्रभुपाद जी ने पूरा विश्वास रखते हुए गुरु के आदेश का पालन करने का प्रयास किया, जिसका क्या परिणाम हुआ, पूरे विश्व में ये हरि नाम फैल गया है। आज विश्व का कोई कोना नहीं है जहाँ की ये हरि नाम नहीं पहुंचा हो, जहाँ की आप इस्कॉन के भक्तों को नहीं प्राप्त कर सकोगे, क्योंकि ये चैतन्य महाप्रभु जी क्या थी, भविष्यवाणी, पृथ्वी पे आचे तक नगर ग्राम सर्वत्र प्रचार और भी मोड़ो नाम, विश्व में हर जगह क्या यही नाम पहुंचेगा। और महाप्रभु ने क्या आदेश दिया हम सबको, बोलो कृष्ण बाजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा, कृष्ण का नाम लो कृष्ण की पूजा करो, और कृष्ण की जो शिक्षा है गीता भागवतम में उसको अपनाओ और उसको आगे बढ़ाओ। तो आप सबसे यही निवेदन है, आप गहराई के साथ महाप्रभु की शरणागत होने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। साधन कीर्तन करो, जाप करो। चैतन्य महाप्रभु की गौरांग 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 हरे कृष्ण। ओके इट्स ओके, आई विल स्टॉप नाउ। और सर्टिफिकेट, होल्ड ऑन। अब सबको सर्टिफिकेट मिल रहा है, क्लास में बैठने के लिए सर्टिफिकेट मिल रहा है।
सर्टिफिकेट के लिए बहुत मेहनत